मदद करूं बेटा?
नहीं शुक्रिया।
अब इस कमरे को एक नए पेंट की जरूरत है। एक हफ्ते की छुट्टी लूंगा और अकेले ही पूरे घर को पेंट कर दूंगा।
और इसके बाद 3 महीना आराम करना पड़ेगा।
अपने बाप को क्या समझती हो? ठीक है कि 10-20 साल पहले का आदमी नहीं रह गया, लेकिन अब भी अपनी बेटी का कमरा तो पेंट कर ही सकता हूं।
कभी ये नहीं सोचा कि मेरी जगह आपका कोई बेटा होता?
ये कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
सच बताइए, मैं नाराज नहीं होंगी।
बेटी, मैं खुदा की दी हुई हर चीज पर राजी हूं।
बाबा, लड़कों के वो कपड़े जो मेरी विलादत से पहले खरीदे थे वो अब भी स्टोर में हैं।
हाँ, मेरा दिल तो चाहता था कि बेटा हो, लेकिन अब अगर तुम पर जर्रा बराबर भी आंचे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो बताओ कि कौन सा कलर दीवारों पर करूं? सोच रहा हूं आधा लकड़ी कलर और ऊपर का हिस्सा हल्का हरा या नीला करें, या
मैंने सबको बहुत परेशान किया, आपको, अम्मी, आजिता। मेरी गलतियों से आप भी परेशान हुए। मैं ऐसा नहीं चाह रही थी।
हम एक फैमिली है बेटा, हर चीज में शरीक हैं, मुश्किलों में भी और खुशियों में भी।
लेकिन तमाम मुसीबतों की जड़ मैं थी। खुद को माफ नहीं कर सकती।
मानता हूं, हमेशा दूसरों को माफ करना अपनी गलतियों को माफ करने से ज्यादा आसान होता है।
यानी मैं उम्मीद रखूं कि आप मेरी गलतियों को माफ कर देंगे? आपको बहुत चाहती हूँ बाबा।
हाँ तो तुम्हारे कमरे के साथ क्या किया जाए? याद रहे कि तुम्हारे बाप काबिल इंजीनियर हैं, उनको कम ही टाइम मिलता है ऐसे काम करने के लिए। मगर यह कि होम मिनिस्टर इजाजत दें। और हां, अगर खुदा ने चाहा तो कुछ दिन के लिए मशहद चलेंगे। मेरे ख्याल में हम सबको कुछ दिन आराम और सुकून की जरूरत है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।
वालेकुम
अस्सलाम। एक बात सोचिए, इससे भरो। मुर्तजा, मुर्तजा, मुर्तजा कहाँ गया? मुर्तजा
कहीं खेत में खड़े जी चिल्ला रहे हो?
ये पकड़ो, इसे भरो, एक नई कंपनी खोलने का फार्म
शुरू हो गया। तुम अली रजा बस करो भाई।
डरो नहीं भाई, सिर्फ प्रॉफिट है, खाने पीने के सामानों का कारोबार है। थोक में खरीद के दूसरे तौर पर बेचेंगे। इन्वेस्ट करने वाला भी मौजूद है, शिको साहिबा और फरीदा साहिबा। जल्दी करो, फार्म पर साइन करो, मुझे जाना है। तुमसे मजाक भी नहीं किया जा सकता है।
अब हमारी भी एक तजवीज है, देखो कौन बेहतर है।
क्या?
हफ्ते में 2 दिन खाली रखो, आकर पढ़ाओ।
کیا ہوا؟ بزنس فلاپ ہو گیا؟ شرم آ رہی کہتے ہوئے
فری میں پڑھانا ان بچوں کے لیے جو ذہین ہیں لیکن پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ان کے پاس. تم میتھ پڑھاؤ, میں اور مرتضیٰ فزکس اور کیمسٹری پڑھائیں گے.
ٹھیک, اچھا کام ہے. لیکن
کیا پوری دنیا ملنے کی فیملی کی طرح اتنی امیر تھوڑی ہوتی ہے بھائی؟
کیا ہے, کیوں ایسے مجھے دیکھ رہے ہو؟ غنیمت ہے میں نے ہی یہ باتیں تم کو سکھائیں.
جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟
کیا تم لوگ مطمئن ہو کہ فزکس اور کیمسٹری مجھ سے بہتر جانتے ہو؟
تم تو ہمارے پرچیز نقل کیا کرتے تھے.
ہاں لیکن پتہ نہیں کیسے نمبر زیادہ مارتے تھے.
ہمارے لیے باعث فخر ہے, کافی دنوں سے یہاں تشریف نہیں لائے تھے. البتہ آپ کی محنتوں اور راہ گشائیوں کو اس کیس میں نہیں بھولا جا سکتا. عجیب و غریب کیس تھا رفیع ملکی.
ہو سکتا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں بات نہ کرو آپ.
عجیب ہے, آپ تو ہمیشہ چاہتے تھے کیس کے ڈیٹیل آپس میں.
اس بار میں نہیں چاہتا.
کیوں؟ کیونکہ علی رضا بھی اس میں شامل تھا
شاید.
لیجیے ٹھنڈا ہو جائے گا, بہت اچھا سوپ ہے.
جب مجرم اپنا کام پورے اعتقاد سے انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
مجھے یقین ہے آپ اسے گنہگار مانتے ہیں لیکن آپ کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا.
پیمان سہرابی پیسے کے چکر میں نہیں تھا, عشق و محبت کی تلاش میں تھا.
میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا ایک مجرم آپ کے ذہن کو اتنا مشوش کر لے.
اتنی بے رحمی عشق کے لیے؟ زمانہ بہت بدل گیا ہے, بہت زیادہ.
آپ کو کیا ہوا ہے شایان صاحب؟ ہمارے آپ کے کام میں یہ بات تو عام سی ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟
نہیں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں. اب ان دردوں کی عادت پڑ گئی ہے, آتا جاتا رہتا ہے. یہ ایک گفٹ ہے ایک ٹاپ اسٹوڈنٹ کے لیے جو انٹرنیشنل کیس دیکھنا چاہتا ہے. مجھے اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں ہے, اب تمہیں خود اکیلے ہی اپنے کیس ڈیل کرنے ہوں گے.
شرمندہ نہ کریں جنرل صاحب, ہم تو بس ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں.
میرے خیال میں یہاں کے کھانے اب مجھے سوٹ نہیں کرتے. اب چلنا چاہیے, اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ.
جیسے آپ کی مرضی جنرل صاحب, خدا حافظ.
یہ ریٹائرڈ جنرل کے آگے جناب کی کیا ضرورت؟
یہ کھانا لے جاؤ, میرے مہمان چلے گئے.
السلام علیکم آذر.
وعلیکم السلام نوشین. تم سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی.
واقعی؟
مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا. تمہاری بہت یاد آ رہی تھی.
اظہر تم نے میرے ساتھ برا نہیں کیا لیکن میں نے
اعتراف کرنے آئی ہو. مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے.
ہم دونوں اب ایک طرح کے ہو گئے ہیں لیکن ایک وقت تھا کہ جب تم علی رضا سے شادی کرنے والی تھی تو تم پر حسد ہوا. جب رفیع اور فرزاد کی پوری دولت تم تک پہنچی تب تم سے نفرت ہوئی. اور جب سنا کہ تم ماں بننے والی ہو تو اپنی تنہائی پر مجھے ترس آیا. اور اس وقت بھی آئی ہوں پہلے کی طرح کہ دو بہنوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کریں.
یاد ہے جب ہم ملتے تھے تو ہمارے پاس اتنی باتیں ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات کاٹتے تھے.
اور دونوں ہی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے تھے.
یقین کرو لیکن میں تمہاری بات سنتی تھی.
ہاں لیکن میں کبھی تمہاری بات نہیں سنتی تھی کہ تم کیا کہہ رہی ہو.
ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں تھی.
ہمیں صرف محبت کی ضرورت ہوا کرتی تھی. اپنے اور اپنی زندگی کو موقع ہی نہیں دیا. آزر میں نے ہر چیز کو پانے میں جلدی کی. جلدی ملا بھی لیکن جلد ہی ہاتھ سے نکل گیا.
میں سوچتی تھی خوشی میرے ہاتھوں میں لیکن کچھ نہیں ملا سوائے حسرت کے اور ایک مٹھی خاک. سب چلے گئے اور میں رہ گئی.
ہم سب پیچھے رہ گئے حاضر.
لیکن اب پیچھے نہیں رہنا چاہتی. اپنی آنکھیں کھولنا اور زندگی کرنا چاہتی ہوں.
ارے السلام علیکم. معاف کیجیے کہ میں بالکل متوجہ نہیں ہوا.
وعلیکم السلام. بوڑھے ہو گئے ہو.
میرے بال سفید ہو گئے ہیں یا چونکہ آپ کی پرانی کیسٹ سن رہا ہوں یہ بات کہہ رہے ہیں.
ایک بھی نہیں. لیکن میرے خیال میں اتنے ہنگامے کے بعد ہم سب بوڑھے ہو گئے ہیں. हाँ बूढ़े हो गए हैं। मैं, तुम, शको, फरीदा, ये उम्मीद हमें कहाँ ले जाएगी?
मैं समझ नहीं पाया।
अहम बात नहीं, अहम तो यह है कि हम दोनों समझें कि बड़े हो गए हैं, बूढ़े नहीं।
आप सब इख्तियार हैं, आप बुजुर्ग हैं, थे और रहेंगे।
ओ, तकल्लुफ कम करो। और
अगर तकल्लुफ कम करूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं यहां से जा रहा हूं।
जाओगे? कहां जाओगे?
अभी सोचा नहीं है। शायन साहब, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं?
देखो, मुझे पूछताछ की आदत नहीं है, लेकिन चूंकि तुम हो, ठीक है, पूछो।
क्यों यहां से चले नहीं जाते?
जाऊं? कहाँ जाऊं? मैं यहाँ ठीक हूँ।
एक दूसरे ऑफिस, एक नई जगह, इस एरिया से कहीं दूर, जहाँ जमीन की कीमत बढ़ती रहे, तरक्की करे।
अच्छा, जब खुशी हुई कि इक्तिसादी दिमाग भी तुम्हारा चलने लगा।
मुझसे बड़ी थे।
हाँ वाकई, सच तो यह है कि मुझे ये जगह पसंद है, चूंकि ये पहली जगह है जो तुम्हारे बाप और मामू के साथ ली थी कि काम करे। अब सिर्फ मैं रह गया हूं और तुम। यहां के दर दीवार से यादें जुड़ी हैं। कहां जाऊं? ऐसी जगह जहां दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है, इस पैसे से क्या करूं, किसके लिए रखूं? मुझे इस दुनिया से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है इस पर खुश हूं। अच्छा, अब बजाय इसके कि मुझसे पूछताछ करो, अब तुम बताओ कि कहां जाना चाहते हो।
हफ्ते में 2 दिन ट्यूशन पढ़ाऊंगा गरीब बच्चों को। मैं मजाक कर रहा था, कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप इजाजत दें तो यहीं पर आपके साथ रहूं।
ठीक है, मैं चंद रोज छुट्टी पर जा रहा हूं। अगर कोई काम पड़े तो मुझसे कहना। कहां ले जा रही है ये उम्मीद मुझे? खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज, रात में मुलाकात होगी
इंशाल्लाह।
शायन साहब, अली रजा, अली रजा।
क्या हुआ जलाल चचा, क्या हो गया? बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। इनकी टेबलेट जरा बैग से निकालिए। जलाल चचा, जल्दी कीजिए। शाम साहिबा, अपना मुंह खोलिए।
हेलो, डॉक्टर अहमदी का मतलब है?
कुछ नहीं हुआ।
ना मेरी बात सुनते हैं, ना डॉक्टर की, ना खाने पीने पे तवज्जा देते हैं, और ना वक्त पे सोते हैं।
ठीक है फरीदा, परेशान नहीं हो, खुदा का शुक्र है कि खतरा टल गया है।
अरे शुक्र बेगम, समझ में नहीं आता कि अपना दर्द किससे कहूँ। बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तो 1000 बार दुआ करती हूँ, और जब रात में घर आते हैं तो इन्हें देखकर 1000 बार शुक्र अदा करती हूँ। उनको भी तो कुछ करना चाहिए, कोई उनसे कहता भी नहीं। अरे तुमसे क्या मतलब कि कर्नल आकाशा केस को डील नहीं कर पा रहे हैं?
परेशान ना हो मोमानी, मैं सुबह से ही जब ऑफिस जाता हूँ, शाम में घर आने से पहले तक उनकी देखभाल करता हूँ।
किस चीज़ की देखभाल? अगर ऑफिस में अकेले रहे, अगर खुदा न खास्ता ड्राइव के वक्त तबीयत खराब हो जाए तो?
अच्छा ठीक है फरीदा, बस करो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना? तुम क्यों बेकार की बातें कर रही हो?
मोमानी जान, मैं कल से सुबह उन्हें लेने आऊँगा और शाम में खुद पहुँचाऊँगा।
नहीं बेटा, बात ये नहीं है, शायान को अब रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन वो खुद नहीं मानते।
मुझे जहां तक याद है जलाल चाचा हमेशा ऐसे ही रहे हैं।
क्या मतलब?
यानी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। यानी एक दिन उनकी तबीयत ठीक रही है और दिन खराब। एक दिन गुस्सा करते हैं और दूसरे दिन खुश रहते हैं।
लेकिन मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखते।
अच्छा नाराज ना हो, अली रजा का कोई मकसद नहीं था। इन बातों की जगह उठो, नजर उतारो उनकी।
आखिर नजर उतारने की क्या जरूरत है अम्मी जान? अपने डॉक्टर की बात बस सुनते रहें, जिद ना करें, मुझ पर और शम साहिबा पर गुस्सा ना करें, उस वक्त सब ठीक हो जाएगा।
तुम तो डॉक्टर साहब के लिए चाय ले जाने वाले थे ना, जाओ जल्दी जाओ।
ठीक है। डॉक्टर साहब वो ठीक है ना?
इसे कुछ कहा?
बस आप ही इस कमरे में जाग रहे हैं।
तो क्यों इतने धीमे बात कर रहे हो?
मैं जलाल चाचा को जगाना नहीं चाहता।
वो ठीक है, मेरी सीडी पता नहीं कहाँ रखी है।
खुदा करे जल्दी ही सेहतियाब हो जाएं।
कौन?
खुदा करे वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। जलाल चाचा और कौन?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मिल गई, ये तायर दायदे की आवाज है। मैं डर रहा था कहीं खो ना दिया हो।
बेहतर है?
ऐसा हो सकता है कि मुझे देखे और खुश ना हो।
किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं।
मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, ठीक हूँ।
जी नहीं जनाब, शायान तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो।
अगर तुम्हारी बाप पर रहता तो अब तक 7 कफन सड़ा चुका होता। परेशान ना हो, मैं तुम्हारे बाद मरूंगा। अब तुम नया नुस्खा क्या लाए हो?
जो मर्जी हो खाओ, जो दिल में आए करो, जितना गुस्सा होना हो सुबह से शाम तक आकाशा के केस देखते रहो, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाओ, एक क्या 3-3 बीवियां रखो।
मजाक कर रहे हैं ना?
3 बीवी की बात कर रहे हो?
नहीं, ये जो उनकी तबीयत बहुत खराब है।
परेशान ना हो बेटे, मैं ठीक हूं। ये डॉक्टर अहमदी 20 साल से यही बातें करते आ रहे हैं, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
मैं अगर तुम्हारा दोस्त ना होता, सिर्फ तुम्हारा डॉक्टर होता, तो ये बातें तुमसे नहीं कहता, तुम्हारी बहन से कहता या शुको साहिबा से। मैं चला, मैं अपनी अमानत ले जा रहा हूं। बेहतर है तुम भी अपनी अमानत का ख्याल रखो।
अहमदी, तुम जानते हो जब इंसान बूढ़ा होता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल छोटा हो जाता है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके जाने के बाद सब उसको अच्छे लफ्जों से याद करें।
तुम अगर जाना चाहते हो तो अब भी तुम्हारे पास काफी टाइम है, सिर्फ मेरी बात सुनते रहो। और हां, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी।
इससे पहले इससे ज्यादा आशिकों की सोच थी।
या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, या आप कुछ गाढ़ा बोल रहे हैं?
दोनों नहीं। उठो, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। मुझे फरीदा से कुछ बात करनी है अकेले में।
वसीयत?
तकरीबन। एक लड़की मुझे पसंद आई है, जाओ अब देर हो रही है। आशिक व माशूक के बीच कोई हायल नहीं, तो खुद हिजाब है हाफिज अगर समझ पाओ।
अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा।
वालेकुम सलाम महबूबा, कैसी हो?
नौशीन साहिबा, अगर इजाज़त दें तो मैं चलूँ। मेरे ख्याल में अब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
कहाँ जाओगी?
शायद अपनी बेटी के पास जाऊँ, अब मैं नानी बनने वाली हूँ ना।
नानी? तुम कितने साल की हो?
40 साल की हूँ मैडम, मैं 25 साल से आपके पास हूँ। मेरे शौहर के मरने के बाद जरीन साहिबा ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया था।
यही रुको महबूबा,
मैं नहीं जानती कि क्या करूं। रफी साहब, फरजाद साहब, जरीन साहिबा,
हमने बहुत मुसीबतें झेली हैं महबूबा, हम सब ने। मेरे ख्याल में अब मुश्किलें खत्म हो गई हैं। रुक जाओ महबूबा, साथ में रहेंगे।
बच्चों जल्दी करो, ट्रेन छूटने से एक घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाना चाहिए।
जल्दी मत कराएं, टाइम पर पहुंच जाएंगे।
मोहतरमा, पहले पहुंच जाएं तो बेहतर है, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो।
आपने गैस बंद किया?
जी।
पानी बंद किया?
जी।
पूरा सामान उठा लिया, दवाएं उठा ली?
जी जी जी। अब ये कौन सा फोन करने का वक्त है, छोड़ो ना भाई।
कल से तो कोई जवाब दे नहीं रहा था और अब मुस्तकिल लाइन एंगेज जा रही है।
अब ये कौन सा जरूरी फोन है जो तुम्हें करना है?
फहीम साहिबा से खुदाफिजी करना चाह रही थी, हलालियत तलब करना चाह रही हूँ।
फहीम साहिबा?
हाँ फहीम साहिबा।
अब बस भी करो, टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है।
फिर कोई उठा नहीं रहा।
फरूख साहिबा, मशहद पहुंचकर फोन कर लेना।
जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम, मैं फरूख हूँ, फरूख फरजाद।
सलाम वालेकुम फरूख साहिबा। इंजीनियर साहब ठीक हैं? आज़र की तबीयत कैसी है?
खुदा का शुक्र है। हकीकत यह है कि मैं जा रही थी तो मैंने कहा।
फरूख साहिबा, क्या कुछ हुआ है, हम कुछ कर सकते हैं?
देखिए शुक्र बहन, मैं जाने से पहले अपने दिल की बात कहना चाह रही थी। हम दोनों औरत हैं, दो माँ हैं। मुझे मालूम कि आपने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया, हक देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों खानदान सब पुरानी बातें भूल जाएं। यकीनन हमारी गलतियाँ बहुत थीं, लेकिन हमारी गलतियाँ अमदी नहीं थी।
मुझे शक नहीं है इस पे, मुझे शक नहीं है।
इंशाल्लाह ज़ियारत से वापस आने के बाद हाजिरी दूंगी।
ज़ियारत पे जा रही हैं? कहाँ?
मशहद। ट्रेन से जा रहे हैं, चूंकि फरजाद को प्लेन से डर लगता है।
मुझे भी दुआ में याद रखिए।
ज़रूर।
इंशाल्लाह बखैरियत जाए।
इंशाल्लाह।
फी अमानिल्लाह।
खुदा हाफिज़। शुक्र साहिबा।
सुकून मिल गया।
अरे तुम यहाँ हो? फरूख बेगम थी, बेगम फरजाद।
तो?
कुछ नहीं, ज़ियारत पे जा रही हैं, खुदा हाफ़िज़ी के लिए फोन किया था। अली रज़ा, तुम्हारा दिल अब भी उसी के साथ है?
किसके साथ?
तुम खुद समझ रहे हो, अनजान ना बनो।
आप ठीक तो हैं?
मेरा जवाब तो अली रजा।
आप तो हमारी शादी से खुश नहीं थी।
कभी जबान पे तो नहीं लाई,
लेकिन मैंने आपकी आंखों में पढ़ा था।
उफो, बिल्कुल जलाल चचा की तरह हो गए, हमेशा इंसान से ऐसे सवाल करते हो कि जवाब से बच जाओ।
मुझे डर लग रहा है अम्मी।
किस चीज से? वो तो एक बार इनकार कर चुकी है।
مجھے ڈر اس کا ہے کہ وہ سوچے اس پر مجھے ترس آ رہا ہے.
لیکن تمہارے دماغ میں تو یہ بات نہیں ہے.
نہیں.
تو اسے چاہتے ہو؟ تو پھر جلدی کرو دیر ہونے سے پہلے. تمہارے جو کچھ دل میں ہے اس سے کہو, جاؤ اس سے بات کرو.
نکل گئے ہیں.
اگر جلدی کرو تو پہنچ سکتے ہو.
معاف کیجیے گا, خدا حافظی کرنا بھول گیا تھا.
خدا حافظ بیٹا.
محترمہ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ عرض کروں, میں علی رضا فہیم رسمی طور پر. محترمہ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ عرض کروں, میں علی رضا فہیم رسمی طور پر. نہیں, ایسا نہیں بولا جاتا. محترمہ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ عرض کروں, میں علی رضا فہیم رسمی طور پر کہنے آیا تھا. پرانی باتیں بھول جائیے. آزر صاحبہ, وہ تو جانتی ہے میں اتنے سلیقے سے بول نہیں سکتا, تو میرا مذاق اڑائے گی. آئیے سب کچھ بھول جائیں. اوہ, آئیے پرانی باتیں چھوڑیے اور ان باتوں کو بھول جائیے. بے وقوف, پرانی باتوں سے کیا فائدہ, کیوں قبر کھودنا چاہتے ہو؟ میرے خیال میں مستقبل کے بارے میں سوچنا سب سے بہتر ہے. میرے خیال میں مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. زندگی کو پھر سے بنانا چاہیے, زندگی کو پھر سے بنانا چاہیے. دوسرے انداز سے دنیا کی طرف دیکھنا چاہیے. شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے کہ شاعر بھی تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے. آزر صاحبہ, آپ کو مجھ سے ضرور شادی کرنی چاہیے. آزر صاحبہ, آپ کو مجھ سے, دیکھیے آزر صاحبہ, آپ کو مجھ سے, میں اگر ایسے بولنے لگا تو وہ تو بھاگ جائے گی.
شناختی کارڈ دکھائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بیٹا، خیریت تو ہے؟
فرجاد صاحب، کیا میں کچھ منٹ آزر صاحبہ سے بات کر سکتا ہوں اکیلے میں؟
ہمارے پاس تو کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے.
میں آزر صاحبہ، میرے پاس ہے.
کوئی بات نہیں، لیکن
اس وقت ان باتوں کے لیے مناسب موقع نہیں ہے فہیم صاحب.
معاف کیجیے گا، لیکن میں یہاں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں.
لیکن آپ نے آ کر ہمیں پریشان کیا ہے.
آزر صاحبہ، آپ کے جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا.
میں گھومنے نہیں جا رہی ہوں فہیم صاحب. ایک سال سے کوئی ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا، اسی لیے کچھ دن ہر چیز سے دور رہنا چاہتی ہوں.
ان باتوں کے بارے میں سوچنے کا اچھا موقع ہے.
آپ مجھے سزا دینا چاہ رہے ہیں یا مجھے یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں برا کیا، یا یہ کہوں کہ مجھے معاف کیجیے؟
نہیں میڈم، نہیں، ان باتوں کے لیے نہیں آیا ہوں. جب پیمان سورابی مرا تو میں نے سوچا کہ اس کے پاس اس زندگی میں کیا کمی تھی. ضرور وہ جب پیدا ہوا ہوگا تو اس کے ماں باپ اس کی ہر ادا پر مرتے ہوں گے، اور اس کے رونے سے دنیا کے غم ان پر ٹوٹ پڑتے ہوں گے. لیکن جب سے بڑا ہوا کسی نے اسے نہیں دیکھا، اسی لیے ایک عشق کو اپنے دل میں کھو بیٹھا اور اس سے بڑے عشق تک پہنچ بھی نہیں پایا. معاف کیجیے گا، خود کو کنٹرول نہیں کر پایا. ان آنسوؤں کو بہت پہلے نکلنا چاہیے تھا.
رونا بالکل بری بات نہیں ہے، کسی بات کا اعتراف کرنا مشکل کام ہے، لیکن غلطی نہ کرنا اس سے زیادہ مشکل. میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے.
اب ختم بھی کرو، میں یہاں تم سے غلطیوں کا اعتراف کرانے یا معافی سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن خدا کے واسطے اس سفر میں
جناب اپنی قسمت آزمائیے گا، اپنی بیوی کے لیے پلیز. آپ کا بہت بہت شکریہ.
بولنا نہیں جب تک ٹرین چھوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا خیال رکھنا.
تم بھی اپنا خیال رکھنا. سفر بخیر.